السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم اس خوبصورت سورة سورت الزمر کی آیت نمبر 42 سے 60 تک کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ جو ہے بہت رچ ہے، یعنی اس میں اس کا کانٹیکٹ بہت زیادہ ہے. اس کو اس کا احاطہ کرنا اس کی آیات کا اسے تو سارے قرآن میں ہی ایسا ہی ہے، مگر خاص طور پہ اس میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ ان آیات کا پورا حق تو ادا نہیں ہو سکتا بالکل. مطلب سرفیس سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس کے بعد ضرور تدبر کیا کیجئے، ان آیات کو دوبارہ پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ کا سبق ہوتا ہے نا جو، تو اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس کور ہو جاتے ہیں. اور میں نے نوٹس یہ کیا ہے کہ جب آپ لوگ بعد میں جو بات کرتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں وہ والی بات ہوتی جو بالکل اینڈ پہ آئی ہوتی، یعنی شروع کی ساری باتیں آپ زیادہ تر بھول جاتے ہیں. انسان کا ذہن ایسے نا، وہ ایک وقت میں بہت زیادہ چیزیں کمپریہنڈ نہیں کر پاتا، تو ضروری ہے کہ آپ بعد میں اس کو پڑھا کریں تاکہ وہ جو پیچھے آیتیں گزر گئیں ان کے اوپر بھی تو آپ غور کریں نا. یہ تو نہیں کہ سبق کے اینڈ والی صرف آیات ہیں جو ضروری ہیں اور شروع کی نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی دیکھا کریں، وہ ٹاپکس بھی توجہ کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں. تو آج دیکھتے ہیں سورت الزمر آیت نمبر 42 سے 60 تک. اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو، حین موتیہا، ان کی موت کے وقت. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ موت کے وقت تو روح قبض ہوتی ہے. والتی لم تموت فی منامیہا، اور وہ جو نہیں مرتے اپنی نیند میں، اس کا مطلب نیند میں بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے. اسی وجہ سے محاورہ بھی ہے نا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. وہ اسی وجہ سے کہ ہم ایک چھوٹی موت کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، بس روک لیتا ہے اس کو جو فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا. جب موت دینی ہوتی ہے تو پھر اس روح کو وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیجتا ہے دوسری کو، دوسریوں کو، إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، ایک مقرر وقت تک. اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ کیا چیز بھیجی جا رہی ہے، کیا چیز روکی جا رہی ہے، اور نیند میں ہم ایوری نائٹ کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور یہ بات ہمیں قرآنی بتاتا ہے سبحان اللہ، کہ نیند کے اندر ہم کس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ جب انسان کے اوپر نیند آتی ہے تو اس کی ایک چھوٹی موت ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایسا سمجھے کہ سمجھ لیں کہ قبض نفس یا قبض روح جو ہے اس کی دو صورتیں. ایک تو موت کے وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ تو روح قبض ہو جاتی ہے، وہ موت اکبر ہے، بڑی موت ہے، اس میں تو سانس بھی بند، ختم. ایک عند الموت، عند النوم ہے، یعنی نیند کے وقت. یہ ہم چھوٹی موت سے، موت اصغر سے گزرتے ہیں جس میں سانس بند نہیں ہوتا، لیکن ایک روح انسان کے اندر سے نکلتی ہے. اب روح کی، اب یہ سمجھیں اس بات کو، रू की समझ लें कि दो किस्में, एक है हैवानी रू और एक है नफसानी रू। नफसानी रू या शऊर भी कह सकते हैं हम। तो जो हैवानी रू है वो नींद में भी इंसान के जिस्म में रहती है, और ये जो हमारे सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं ना, मेदा काम कर रहा है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, और भी जो भी हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, आप इधर से उधर करवट ले रहे हैं, ये सब ये हैवानी रूह के जरिए हो रहा है। एक नफसानी रूह है, ये जिस्म से निकल जाती है, बदन को छोड़ देती है और इधर उधर घूमती फिरती है, इसलिए इंसान ख्वाबों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो ये रूह घूम रही होती है, और अब जब ये निकलती है तो इसकी वजह से हमारी ये जो सिक्स सेंसेस हैं इनमें बड़ी कमी आ जाती है, हमारी सेंसेस में कमी आ जाती है, हम नहीं ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, कुछ हमारे करीब कोई बात भी हो रही है हमें नहीं पता है। और अगर ज्यादा शोर होता है तो इतनी तेजी से, इस रूह की स्पीड बहुत तेज है, इतनी तेजी से ये वापस लौट आती है, क्योंकि इसको अपने जिस्म से बड़ी मोहब्बत है। तो अब अगर ये नफसानी रूह को ये कहीं खुशी मिलती है, कुछ होता है, तो हैवानी रूह पे भी इसका असर होता है। अगर नफसानी रूह कहीं परेशान होती है तो हैवानी रूह के ऊपर भी इसका असर है, इसलिए इंसान बाज दफा चीखना शुरू हो जाता है अपनी नींद में, बाज दफा आप उठते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो अगर अल्लाह ताला फैसला कर ले कि उसने इंसान को जिंदगी देनी है, तो अल्लाह ताला इस नफसानी रूह को वापस लौटा देता, और अगर अल्लाह ताला फैसला कर दे कि इसको मौत देनी है, तो नफसानी रूह तो पहले ही निकली हुई है, ये जो हैवानी रूह है ये भी निकाल ली जाती है, दोनों रूहें मिल जाती है, ये एक ही चीज है, मतलब समझ ले कि कॉइन के दो दो तो तरफ, तो ये दोनों एक ही हैं, तो दोनों मिल जाती हैं फिर, और मौत वाकई हो जाती है इंसान की। क्या इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि रोक लेता है उसको जब फैसला करता है मौत का, यानी कौन सी रूह को रोक लेता है, वो जो नफसानी रूह निकली थी ना उसको अल्लाह ताला रोक लेता है जब मौत का फैसला करता है, और भेज देता है दूसरियों को, यानी जो दूसरी जिनका अल्लाह ताला ने मौत का फैसला नहीं किया हुआ उनको वापस भेज देता है कि वापस जिस्म में चले जाएं, लेकिन कब तक, इला अजले मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इसी तरह चलता रहेगा, एक मुकर्रर वक्त, एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर रूह नहीं लौटेगी, या ये मोहलत दी गई कि एक मुकर्रर वक्त तक इसी तरह लौटती रहेगी हत्ता के मौत आ जाए। तो फिर दिन में भी मौत आ सकती या रात में आ सकती, इसीलिए आप देखते हैं बाज दफा लोगों का कहा जाता है अच्छा भला रात को सोया था, पता नहीं क्या हुआ, फिर उठा ही नहीं, तो वो सोच लें सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमाता है ना इन्ना फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, इसमें बेशक निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आप इसे एक आयत कोई लेके बैठ जाए ना तो आप इस पे गौर व फिक्र करें तो आप हैरान होंगे, अब हमारे पास इतना वक्त तो नहीं होता, लेकिन आप इसके ऊपर सोच सकते हैं नींद क्या चीज है और मौत क्या चीज है। नींद वाकई जब आप मसलन है कि ये ताक रातों में जागते हैं आप रमजान में और नींद का गलबा आने लगता है, इंसान इतनी कोशिश कर रहा होता है लेकिन नींद हावी होने लगती है, तो फिर इंसान को समझ आती है कि मैं कितना बेबस हूँ, बड़े बड़े बादशाह हों या अंबिया हों औलिया हों कोई भी हो, नेक से नेक इंसान हो या बहुत बड़ा अमीर कबीर हुक्मरान बादशाह कोई भी हो, नींद के सामने वो भी बेबस है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की एक मखलूक है ना नींद, उसके सामने इतने बेबस हो गए कि तुम्हारा जरा भी जोर नहीं चलता। तुम ये सोच लो कि अल्लाह ताला कितनी कुदरतों वाला है, वो क्या रब है जिसने एक छोटी सी अपनी मखलूक से तुम्हें मगलूब कर दी, छोटी सी मखलूक है अल्लाह की, नींद क्या चीज है, नजर भी नहीं आती, लेकिन कैसे वो जब आ जाती है तो इंसान अच्छा भला बड़ा पहलवान भी बेबस हो जाता है। आप देखे ना वो लोगों को जो अस्तग़फ़िरुल्लाह जो टॉर्चर करते हैं, तो मुजरिमों से राज उगलवाने के लिए वो क्या करते हैं कि उनको बहुत दिनों तक सोने नहीं देते, और जब सोने नहीं देते तो वो फिर इतने बेबस हो जाते हैं कि वो सारे राज उगल देते हैं। अब जब नींद के सामने इंसान ऐसा बेबस हो जाए तो सोचें कि अल्लाह ताला के आगे, एक एक मखलूक के आगे इतना बेबस है, अल्लाह के आगे क्या इंसान की हैसियत है, अल्लाह ताला के आगे इंसान क्या खड़ा रह सकता है, जब वो एक नींद के आगे भी नहीं खड़ा रह सकता, उसके आगे भी बेबस हो जाता है। तो इंसान अपनी हैसियत को पहचाने के, इंसान तो क्या चीज है कि तेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं, वैसे इंसान बहुत बड़ी चीज बनता है, बहुत अकड़ता है, लेकिन देखो कि इंसान कितना बेबस हो जाता है, कितना बेबस हो जाता है कि इंसान से अपने आप को संभाला भी नहीं जाता। अब ये देखें कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस एक्सपीरियंस से रोजाना इंसान को गुजारता है, हर रात इंसान इस एक्सपीरियंस से गुजरता है कि वो नींद में से जाता है और फिर उठता है, नींद से निकलता है और फिर उठता है। अल्लाह ताला याद कराता है कि देखो इसी तरह एक दिन तुम्हें मौत आ जानी है, और मौत से भी तुम उसके बाद दोबारा उठाए जाओगे, मौत से भी तुम्हारी दोबारा, इस जो बासबादुल मौत का इनकार करते हैं वो ये देखें कि वो कैसे इनकार करते हैं, जबकि वो रोजाना उठते हैं, रोजाना सोते हैं, रोजाना उठते हैं, और फिर उसके बाद फिर इनकार कर देते हैं कि एक दिन वो ऐसे उससे गुजरेंगे कि वो दोबारा वो उठाए नहीं जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए इंसान समझे इस चीज को, और इससे हमारा ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए कि हम लोग जो इस चीज का मुशाहिदा करते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि अल्लाह ताला जरूर उठाएगा एक दिन। और इसी पे एक जो दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रात को सोने की दुआ, वो बहुत ही इतनी खूबसूरत दुआ, और इसी के अंदर भी इसी चीज को बयान किया गया और हमें ये बात समझा दी गई है कि किस तरह इंसान जब सोएगा और फिर वो अगर अल्लाह ताला उसकी रूह को वापस नहीं भेजता तो उसका उसके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करे। सोचें जब हर रात इंसान ये सोच के सोए कि पता नहीं मेरी रूह वापस लौटाई जाती है या नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला अगर मुझे नींद में ही मौत दे देगा तो मेरा फिर क्या होगा। अगर इंसान ये रात को सोच के सोए तो जाहिर है फिर बहुत चीजों पे तौबा इस्तगफार भी कर सकता है, फिर जाहिर है किसी को माफ भी कर सकता है, फिर जाहिर है इंसान बहुत सारे जो ग्रजेस दिल के अंदर है वो भी निकाल सकता है। तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो अपने तहबंद के अंदरूनी हिस्से से उसको झाड़ ले, अब ना जाने इस पर क्या कुछ हो। यानी सबसे पहले क्या करें, अब आपके पास मतलब तहबंद तो हमारे पास नहीं है, मतलब हमारा दुपट्टा या हमारी चादर है उससे अगर हम बिस्तर को झाड़ लें, और उसको इसलिए नहीं कि पता नहीं हमारे बिस्तर पे कोई सांप ना हो या कुछ है और हमें तो नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको सोचे कि इससे झाड़ ले ताकि पता नहीं अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी कोई मखलूक हो, क्या हो बिस्तर के ऊपर, हम नहीं जानते। फिर ये दुआ पढ़े, बिस्मिका रब्बी वदातु जंबी, ए मेरे रब मेरे पालने वाले, मैं तेरे नाम से अपना पहलू अपने बिस्तर पे रखता हूँ, वह भी का अरफा हो, और मैं तेरे नाम से ही उसको उठाता हूँ, यानी अपने आप को, इन अमसकता नफसी, अगर तू मेरी जान को कब्ज कर ले, फरहमहा, तो तू इसके ऊपर रहम फरमाना, वह इन अरसलता, और अगर तू भेज दे इसको यानी वापस मेरी रूह लौटा दे, फाफदहा, तो इसकी हिफाजत करना, बीमा तहफद बिही इबादक सालेहीन, जैसे कि तू नेक बंदों की हिफाजत करता है ऐसे मेरी इस रूह की हिफाजत करना, यानी अल्लाह, यानी दिन जब चढ़ता है तो जैसे नेक बंदे होते हैं तेरे तू उनकी हिफाजत करता है, अल्लाह इसी तरह मेरी हिफाजत करना। अगर तू मेरी रूह को रोक ले फिर इसके ऊपर रहम फरमाना, यानी अगर मैं मर जाऊं नींद के अंदर ही तो अल्लाह तू रहम करना, और अगर मैं जाग जाऊं मैं वापस आ जाऊं तो अल्लाह मेरी रूह की हिफाजत करना। कितनी प्यारी दुआ है ना, यानी दिन अगर मेरा शुरू होता है, आप देखें दिन के अंदर कितनी चीजें हैं जो शर पहुंचाने वाली हैं, कितने फितने हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कितना कुछ होता है, तो अल्लाह ताला तू इसमें हमारी हिफाजत करना। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि हम सबको ये याद कर लेनी चाहिए, और जब तक नहीं याद होती तो इसको अपने पास रखें और हम इसको मांग के सोया करें, इस दुआ को, इसके बगैर ना हम रात को सोएं, क्योंकि हमने अपने रात अपनी नींद से पहले भी ये दुआ कर ली, तो ये दुआ कबूल हो जाए तो सोच लें कि फिर अल्लाह ताला की उनका रहम होगा, अगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौत दे दी, और अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी तो फिर भी अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तो इसलिए ये सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत दुआ भी है, और ये आयत हमें बताती है कि हमारी हम मौत के एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, फिर कितना इस चीज के ऊपर भी इंसान को रात को सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ, मेरे अल्लाह की कुदरत है, अगर वो मेरी जिंदगी लौटा दे तो ये उसकी मेहरबानी। यानी आप ये सोच लेना कि इसके बाद आप अल्लाह ताला के आगे और ज्यादा झुक जाते हैं, और ज्यादा अल्लाह ताला की उसकी कुदरत का एहसास करते हैं, और अपनी बेबसी का भी, कि अल्लाह मैं अब कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने सोना ही नहीं है, मैंने सोना नहीं है, मैंने बस जागे ही रहना है, और मैं तो इससे गुजरना ही नहीं चाहता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो भी इंसान इससे गुजरता है, हर इंसान गुजरता है, और हर मखलूक सरती, आप देखिए जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं, तो आप तो सारे जो जितने भी चरिंद परिंद सबको नींद का गलबा आता है। कैसी अल्लाह ताला ने ये एक मखलूक बनाई है ना, इस पे कभी भी नहीं गौर करते हम कि ये क्या चीज है, हमें पता भी नहीं चलता, हम नींद की आगोश में चले जाते हैं, उसके बाद हम उठते हैं, और कितनी दफा ये पता नहीं हमारी रूह आती और जाती है, कितनी दफा ऐसा होता है हम रात को आंख खुलती है फिर उसके बाद हम फिर चले जाते हैं नींद में, फिर हमारी आंख खुलती फिर नींद में चले जाते। तो अल्लाह ताला की ये निशानी है, इसका मतलब नींद भी अल्लाह की निशानी है, मौत भी अल्लाह की निशानी है, और ये रूह का निकलना और वापस आना ये भी अल्लाह की निशानी है, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इनके ऊपर इंसान गौर व फिक्र करे तो अल्लाह ताला को पहचान ले, जो इंसान अपने आप को समझते हैं कि हम खुदा हैं, या जो समझते हैं कि हम बहुत कुव्वत और ताकत वाले हैं, या जिनको किसी ने खुदा बनाया हुआ है, वो देख लो वो तो कितने बेबस हैं कि वो भी नींद से आजाद नहीं, पाक नहीं। जिनको भी लोग पूछते हैं, चाहे वो कितने ही बुजुर्ग हो, कितने ही बड़े औलिया अल्लाह हो, खुद सोचें अगर वो दुनिया से चले भी गए, या जो दुनिया में हैं उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हो कि ये हमारे काम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये हमें कुछ दे सकते हैं, वो तो इतनी भी कुदरत नहीं रखते कि वो अपनी नींद पे काबू पा सके और इसको अपने से हटा सके, वो भी सो जाते हैं और आधी मौत का एक्सपीरियंस कर लेते, और एक जात सिर्फ है जो ला तखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ना ऊंग है और ना मौत है, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, वो सिर्फ अल्लाह की जात है, कि उसको ऊंग तक नहीं है, ऊंग तक नहीं है, ना नींद है ना मौत है, अल्लाह हू अकबर। तो ना अच्छा, जो नींद है वो तो ज्यादा गहरी चीज है, ऊंग तो उससे बहुत हल्की चीज है, ऊंग तक नहीं अल्लाह ताला को आती, कि वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, और बगैर किसी गफलत के, बगैर किसी आराम के, इन सब चीजों से वो पाक है, और ये इंसानी कमजोरी है कि वो नींद से पाक नहीं है, इंसान की कमजोरी है कि वो नींद उसकी जरूरत है, वो उसको सोना ही सोना है, वरना वो जिंदा रह ही नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा अगर वो सोए ना। तो सुभान अल्लाह, ये इस निशानी पे भी आप गौर करिएगा और इससे अपने रब को पहचानिएगा। अम इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, क्या वो बनाते हैं या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा सिफारशी, कुल कह दीजिए, अवलौकानु, क्या भला अगर वो हूं, ला यमली कून शैअन, नहीं मिल्कियत रखते किसी चीज की, वला याकिलून, और ना वो अकल रखते हूं। क्या इन्होंने अल्लाह की सिफारशी बना ली है जबकि वो कोई चीज की भी मिल्कियत नहीं रखते? उनको कैसे तुमने, यानी किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? किस इख्तियार के तहत तुम ये सोचते हो कि हमारे सिफारशी हैं और वो हमें बचा लेंगे? दो तरह की सिफारिश के बारे में बातें मुशरिकी ने मक्का करते थे। एक तो ये कि हम इनको इसलिए पुकारते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ ये हमारी सिफारिश कराएं और हमें रिस्क मिले, हमें हमारे हमारे रोजी में ज्यादा ज्यादती हो, हमें नेमते मिले। और दूसरा वो ये कहते थे कि हम इसलिए इनको पुकारते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला से करीब कर देंगे और हमारी शिफाअत करेंगे कयामत के दिन, और हमारी हमें इनकी शिफाअत की वजह से कयामत के दिन निजात मिल जाएगी, हमारी बख्शिश हो जाएगी। आज भी बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि फलां फलां हमारे सिफारशी होंगे और उनको हम थाम लेंगे तो वो हमें पार करा देंगे। अब ये सोचना चाहिए कि क्या उनके पास कोई किसी चीज की मिल्कियत है? क्या वो कोई अकल रखते हैं? अकल इसलिए यहाँ पे कहा गया क्योंकि मुशरिकी ने मक्का तो लकड़ी के बुतों को पूजते थे, पत्थर के बुतों को पूजते थे, उनमें क्या अकल है? और मालिक तो किसी चीज के भी नहीं, कितमीर तक के मालिक नहीं। एक खजूर की गुठली के ऊपर जो इतना सा धागा होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया इस चीज तक के मालिक नहीं। सिफारशी कहाँ से बनेंगे? अभी हमने बात की कि नींद तक के ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं, अगर वो जिंदा है तो। और अगर वो जिंदा ही नहीं है, कोई पत्थर की चीज है, तो वो क्या चीज है? वो उसके अंदर तो वैसे ही कोई अकल ही शहूर ही नहीं है, ना वो किसी से की मिल्कियत रखते हैं। तो किसी को ना इख्तियार है कि वो खुद सिफारशी बन जाए कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और ना ही किसी को ये इख्तियार है कि वो किसी और को सिफारशी बना दे। ये भी नहीं इख्तियार, यानी हम में से कोई उठ के ये नहीं कह सकता मैं जी फलां को अपना शिफात के करने वाला बना लूंगा, फलां मेरा सिफारशी बन जाएगा, ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी किसी चीज की मिल्कियत नहीं रखता। मिल्कियत फिर किसकी है? कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, कह दीजिए अल्लाह ही के लिए शिफात है सारी की सारी, यानी शिफात का मालिक अल्लाह है, ये इख्तियार अल्लाह का है, मेरा आपका किसी और का भी इख्तियार नहीं है। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा नहीं होगा कि आप समझते हैं कि राइट अवे जाके सिफारिश शुरू कर देंगे, किसी की भी शिफात करने लगेंगे, अल्लाह इसको बख्श दे, ऐसा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा अल्लाह ताला के आगे झुके रहेंगे, उसकी हम तस्बीह बयान करेंगे। वो भी फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त ही मुझे सिखाएगा, पता नहीं कितना अरसा इसमें गुजर जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा कि अपना सर उठाओ और मांगो और सिफारिश करो, तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तियार से जाते ही करने शुरू जाएं, या अल्लाह इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, और इसको मैंने बचा लिया, और मैंने इसको, और ये इसको तो तुझे माफ करना ही पड़ेगा, नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये कैसी बात हम सोचते हैं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हाल है, कोई और कैसे उठ के एकदम अपने से कह सकता है कि मैं फलां की शिफात करने के लिए खड़ा हो गया? तो यानी शिफात सारी की सारी अल्लाह के हाथ, जिसको चाहे ये इख्तियार दे कि वो शिफात करे, और जिसके लिए चाहे वो इख्तियार दे कि वो उसकी सिफारिश की जाए, उसके लिए सिफारिश की जाए। समझ आई? दोनों बातें समझ लें, यानी शिफात के मामले में ये बात समझनी चाहिए कि कौन शिफात करेगा, ये भी अल्लाह ने फैसला करना, किसके लिए शिफात करेगा, ये भी अल्लाह ने फैसला करना। इसीलिए तो कुल लिल्लाहि शफाअतु तो जमीआ, सारी की सारी शिफात उसके हाथ में, बंदे के हाथ में फिर क्या है? क्या आप सोचते हैं अपनी मर्जियों से लोग उसे शिफाते करते रहेंगे? नहीं, उनका क्या इख्तियार है, और या उनके पास क्या मिल्कियत है किसी चीज की कि वो शिफात करने के लिए खड़े हो जाए और कहें कि हमारा हक है शिफात करने का? वहां पे सब बेबस होंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी। वहां पे तो इंसान अपनी जान के लिए पहले फिकर कर रहा होगा, किसी और की क्या फिकर करेगा। और उसके बाद हाँ अल्लाह ताला इजाजत देगा, लेकिन वो किस लिए, किस लिए देगा इजाजत? इसलिए ताकि उन लोगों को ऑनर दिया जाए जिन लोगों को अल्लाह ताला शिफात का इख्तियार देता है, उनको इज्जत देने के लिए। जैसे हम मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ये तकरीबात के अंदर जब इनामात दिए जाते हैं, या कोई 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 और ऐसी चीज, सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है, तो फिर कुछ गेस्ट होते हैं, उनको बुलाया जाता है, जी आप आए और आप स्टूडेंट्स के अंदर ये तकसीम करें। अब वो उसने तो नहीं फैसला किया ना, वो तो आके आप उसको एक इज्जत दे रहे हैं, आप उसको स्टेज पे बुलाते हैं, फिर वो देता है। तो अब वो तो ना चूज कर रहा है, ना उसको कोई पता है, वो तो बस देने वाला है। तो आपने असल में उसको इज्जत दी है। तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को खड़ा करेगा, आप शिफात करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बख्शना होगा, इसलिए अल्लाह ताला उनको खड़ा करके उनसे फरमाएगा आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश के ऊपर इनको मैं बख्शूंगा। तो असल में शिफात फिर किसके हाथ में हुई? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, ना कि दरगाहों पे जाके चादरें चढ़ाने की, कि ये हमारी सिफारिश करेंगे इसलिए हम यहाँ पे चादरें चढ़ा रहे हैं। लहू मुल्क समावाती वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत आसमानों की और जमीन की, सुम इलैहि तुरजाउन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। बाद आसमानों की बादशाहत उसके पास, जमीन की बादशाहत उसके पास, तो उसी का हक है ना कि वो ही शिफात का हक जिसको भी दे, वो जिसको चाहे बख्शे, तुम्हें उसकी तरफ लौट जाना। फिर सब जब चीजें उसी के हाथ में है, तो शिफात भी तो उसके हाथ में है। वइदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वहदहु अकेले उसी का, ये अब मुशरिकीन का हाल बयान किया जा रहा है यहाँ पे, कि जब अकेले अल्लाह की बात होती है। हालांकि किसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के ऊपर तो बिलीव करते थे, जी हाँ वो ये कहते थे कि एक अल्लाह है जो कि सबसे ऊपर है, मगर ये उसके शरीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि वो इनकार करते थे, इसीलिए आज उलमा कहते हैं ना कि वो उन लोगों का शिर्क या कुफर में तो सारे ही हैं जो आज भी हैं, लेकिन उनका कुफर कम अज कम इनके कुफर से तो बेहतर था, क्योंकि वो एक अल्लाह को तो मानते थे ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया, खुदा है ही नहीं कोई। वाहिदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु हुश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अकेले अल्लाह का, तो दिल तंग होते हैं। किन के? उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखरत पर, यानी ये नहीं कहा गया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखरत पर ईमान नहीं रखते। जब आखरत का ईमान नहीं होता ना, तो अल्लाह पर ईमान है भी अगर, तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए कि जिसने आखर, किसने कहा है हमें आखरत के बारे में, किसने बताया? अल्लाह ताला ने बताया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि उसके ऊपर ईमान रखो। ईमानियात में से एक ईमान आखरत पर ईमान भी है। अब आखरत का ईमान अगर किसी में नहीं है, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, 6 हैं अरकान ईमान के, पता है ना आपको, उन सब के ऊपर ईमान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें आखरत पर ईमान मिसिंग है, या अच्छा ये भी अब एक बात और समझ लें, ईमान का मतलब ये नहीं कि मैं अपने जहन के अंदर एक आखरत के बारे में खाका रख के और उसके बारे में खुद ही कुछ सोचा हुआ है कि क़यामत के दिन का मतलब ये है कि सारों की बख्शिश हो जानी है, सब ने जन्नत में चले जाना है, सब ऐसे हो जाएगा, और अच्छा वो मेरी अपनी बातें हैं अपने दिमाग की। अब हाँ जी मैं तो क़यामत पे ईमान रखती हूँ, और क्या ईमान है वो जो मेरे जहन के अंदर, ये ईमान नहीं चाहिए। ईमान वो जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया, उस मुताबिक ईमान रखना जरूरी है, उस मुताबिक ईमान होना चाहिए जो जो बात अल्लाह ताला ने बताई कि इस तरह होगा, ऐसे होगा, ये चीज। जैसे अब शिफात की बात आई, अब शिफात का अकीदा मैंने अपना नहीं कुछ बनाना कि मेरे अपने दिमाग में ये आता है, मैं समझती हूँ जी कि फलां हाफिज़े कुरान भी शिफात करेगा तो फलां मेरी शिफात कर देगा और ये तो जरूर शिफारती होगा और ये भी हो, ऐसे नहीं, बल्कि जैसे अल्लाह ताला ने बताया, जैसे अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया उस तरह से। यहां पर बताया गया जो ईमान नहीं रखते अल्लाह की मुलाकात का, अल्लाह ताला से मिलने का, क्योंकि इस अकीदे का बहुत असर होता है इंसान की जिंदगी पे। जितना ये अकीदा स्ट्रोंग होगा ना, उतना ही इंसान की ये बोलती बंद हो जाएगी, अमल पे ज्यादा तवज्जो होगी, बातों पे कम। जितना ये अकीदा कमजोर होगा, बातें बहुत हैं, बहाने बहुत हैं, दलीलें बहुत हैं, इधर उधर की बातें बहुत हैं, आखरत के ऊपर, अपनी फलाह के ऊपर, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। क्योंकि जब आखरत का अकीदा स्ट्रोंग होता है ना, इंसान की परेशानी ही और हो जाती है, इंसान की फिक्रें ही और हो जाती हैं। तो ये लोग जो, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल जो हैं घुटने लगते हैं। इश्मा अज़्ज़त का मैंने आपको क्या बात बताई कि इनके सीने घुटते हैं, यानी अब इनको इनके सीने भींचने लगते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता किन बातों में इंसान का दिल लगता है, वो बातें जो उसके मुताबिक होती हैं, जो जो उसकी पसंद की होती हैं, जिन चीजों से वो मोहब्बत करता है, उनमें इंसान का दिल कितना खिल उठता है ना, और जिन बातों में उसकी दिलचस्पी ना हो, जिन चीजों को वो पसंद ना करता हो, उनसे दिल घुटता है, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने काफरों के बारे में ये बताया कि उनका दिल घुटता है एक अल्लाह के जिक्र से, वह ईजा और ज और उलट है फिर उसके बाद, और किसके जिक्र से उनका दिल बड़ा खुश होता है, वह ईजा जुकी और लदीना मिन दूनी ही ईजा हम यस्तबशिरून, जब उनके अलावा के बारे में बात की जाती है तो उनके दिल खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। अब अलावा के बारे में किसकी, यानी जब बुतों की बात की जाए, जब इधर उधर की बातें की जाए, तो बड़े दिल उनके खुश होते हैं। आज भी आप देखिए, ये तो काफरों की बात हो रही है ना, मुशरिकीन का हाल है, लेकिन आप ये देख लें कि जिन लोगों का अकीदा आखरत स्ट्रोंग नहीं है या सिर्फ बातों में है, उसके बाद वो क्या कहते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो उस वक्त उनके सीने घुटने लगते हैं, तंग होने लगते हैं। और दूसरों की बातें की जाती हैं, किसी मसलन सात बीबियों की कहानी की बात आ गई, पीरों फकीरों की बातें आ गई, इसी तरह फलां किस्सा उसके किस्से, अपने मन घड़त किस्से, जी ऐसा हो गया, उसने ये किया तो ये हो गया, पता नहीं क्या कोई ऐसा ही चमत्कार हो गया, उन बातों के अंदर बहुत दिलचस्पी है। लेकिन कहीं कुरान की आयत आ जाए, उनके सामने पढ़ी जाए, उसका तर्जमा बयान किया जाए, हदीस बयान की जाए, उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं। ये किससे कहानियां सुनाते जाओ हमें, इनके उनके उनके, भाई औलिया अल्लाह के किस्सों को हम बड़ा इंजॉय करते हैं, ये ठीक है औलिया अल्लाह हैं उनके किस्से हैं, लेकिन जब एक अल्लाह की बात आती है, कुरान की बात है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसमें क्यों दिल घुटता है? इससे भी आगे चले जाएं, जिनका बिल्कुल ही ईमान कमजोर है आखरत के ऊपर, फिर उसके बाद उनका हाल क्या होता है? उनका हाल तो ये होता है कि अल्लाह की बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि चैनल चेंज कर देते हैं, जहां पे कोई दर्स हो रहा है वो नहीं अच्छा लगता, वो दूसरी दूसरा चैनल अच्छा लगता है, जहां पे गाने चल रहे हैं, जहां पे और चीजें हो रही हैं। इसी तरह मजलिसों में देख लें, बास लोगों को इतनी दिल की तंगी होती है अल्लाह के जिक्र से कि वो बस कहते हैं, क्या फिर वो ही बोर टॉपिक शुरू कर दिया, नहीं उनका दिल घुटता है, उनसे सुना भी नहीं जाता, और अगर कहीं कोई बुला ही ले दर्स के ऊपर तो इतनी देर में जाना कि खत्म ही हो चुका हो, क्योंकि हम जाके अपनी बातें करें, जरा मजा करें, कुछ इंजॉयमेंट होनी चाहिए। ये क्या बोर बातें लेके बैठ जाते हैं। वो जाते उस वक्त है ताकि सब खत्म हो जाए और हल्ला गुल्ला शुरू हो जाए, उसमें मजा आता है। इसी तरह अगर कोई टॉपिक आ जाए ऐसा बातों बातों में, तो फौरन टॉपिक चेंज कर देते हैं। अच्छा, उनको उनके सामने कोई अल्लाह की बात की जाए ना, तो उनको याद आ जाता है कि अभी हमने कोई फोन पे चेक करना है, कुछ फोन पे टेक्स्ट चेक करना शुरू हो जाएंगे। मजलिस में बैठे में अल्लाह का जिक्र हो रहा है और फोन चेक कर रहे हैं, क्योंकि दिल नहीं लग रहा ना। ये अलामत इस चीज के, दिल नहीं लग। देखिए, जहां पे आपका दिल लगता है, कोई मूवी चल रही हो, कोई ड्रामा चल रहा हो, उसका कहते एक सीन भी ना इधर से उधर हो। अगर किसी ने उठा दिया कुछ, कहना पड़ गया किसी को कि ये चीज ला दो, तो उतनी देर भी लाने लाने में भी गर्दन मुड़ी होती स्क्रीन की तरह, कि एक सीन भी ना चला जाए, पॉज करके जाते हैं कि एक एक डायलॉग भी मिस ना हो जाए। नहीं, लेकिन जब अल्लाह की बातें आती हैं तो इतने रिलैक्स्ड हैं हम, क्या हमें मजा ही ना आए। ये तो हमारी रूह की गिज़ा होनी चाहिए। और वाकई जिनके लिए होती है, यकीन करें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि अगर एक जगह दर्स हो रहा होता है ना, वो गुजर रहे हैं पास से, वो जानते नहीं है। एक हम रेस्टोरेंट में थे, वहां पे दर्स चल रहा था, तो कोई लोग आए, वो उनकी भी कुछ कुछ वो वहां पे भी खाना खाने आए थे। वो खातून वहां से उठ के हमारे पास आ गई, कह रही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये देख के किस तरह अल्लाह का जिक्र करें, जिनके अंदर मोहब्बत हो। देखे, इसी तरह हम हरम में कई दफा ऐसा होता है कि बात की जा रही हो, कोई अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, कोई छोटा सा दर्स हो रहा है, तो कोई लोग जो रैंडमली इधर उधर बैठे हुए हैं वो भी उठ के आ जाते। जिसका दिल हो, जिसका शौक हो, वो तो ढूंढता है ऐसी मजलिसें, वो तो तलाश करता है ऐसी बातों को, उसका दिल करता है कि कोई ऐसी बात करे। और जिनके दिल दूसरी चीजों में लगे होते हैं, उनका हाल ये होता है कि उनके दिल को ऐसे बेचैनी लग जाती है, जमाइयां आने लगती हैं। इसीलिए तो कभी फोन चेक करेंगे, कभी इधर उधर देखेंगे, कभी बच्चे से खेलना शुरू कर देंगे कि बस खत्म हो। हमें देखना चाहिए, हम सबको अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि इन टॉपिक्स को हम इंजॉय करते हैं और किन बातों पे हम कहते हैं लो अब फिर शुरू हो गए। अच्छा, मुंह से चाहे नहीं बोल रहे, दिल में कह रहे हैं कि क्या फिर यही वाली बातें, फिर ये टॉपिक लेके बैठ गए। ये कौन सी मजलिसें हैं जिनके अंदर हमें मजा आता है, कौन सी मजलिसें हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं। कोई ढोलकी पे बुला ले, कोई मेहंदियों पे बुला ले, शादियों पे बुला ले, तो हम कितने खुश होके जाते हैं। और कोई अगर कोई दीन की मजलिस पे बुला ले, तो फिर हमारा हाल क्या होता है। नहीं, मौसम ठीक नहीं है, नहीं आज सर में दर्द हो गई, नहीं बच्चे को स्कूल से लाना, नहीं फलां चीज हो गई। लेकिन ऐसी जो दूसरी मजलिस है, वो हमारे पास कोई वो नहीं होता, बल्कि उसमें शौक से जाते हैं। सर में दर्द भी है तो गोली खा के चले जाएंगे। तो हमारे शौक क्या है। यहाँ पे तो मुशरिकीन की बात की गई कि उनके सीने घुटते हैं। हम तो मोमिन मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमारे भी अगर अल्लाह के जिक्र में दिल ना लगे, उन मजलिसों में दिल ना लगे, हम इनको कभी हमें मजा ही ना आए, हमारे मजे ही कुछ और हैं। मर्दों के लिए देख लें तो अगर उनको पूरी रात स्पोर्ट्स के कोई मैच, कोई क्रिकेट मैच के लिए सारी रात भी जागना पड़े तो कोई मसला नहीं, पूरी रात गुजर जाती थकते नहीं। लेकिन वही अगर कोई एक आध घंटे का लेक्चर हो, या इमाम साहब अगर नमाज ही लंबी कर दें, तो कहते लो देखो कितनी लंबी नमाज पढ़ा दी। तो देखिए, हमारी शौक क्या है, हमारे दिल किधर लगे हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को तो बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे गफलतों के पर्दे पड़े हैं। हमारा ईमान आखरत पे कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जिनका ईमान आखरत पे नहीं है उनका ये हाल होता है। हम तो कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन मे भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कभी कभी सुनना तो ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा भी ना करो, हमारा मजा खराब हो जाता है। थोड़ी देर की बात कर ली, बस ठीक है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो अपने दिलों का हम जायजा लें, हमें खुद अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। हम खुद जाने हम किधर खड़े हैं। तो नोट किया करें अपने हालात को। देखिए दूसरों का जिक्र होता है, खिल उठते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात हो, फिल्मों ड्रामों की बात हो, आज के कपड़े क्या चल रहे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, खिल जाते हैं चेहरे, चेहरों से पता चल जाता है कि कितनी खुशी है, बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं कुरान हमारे ही तो नहीं पोल खोल रहा। कुल कह दीजिए, कुल क्यों कहा जाता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिम्मेदारी है सारा कुरानी लोगों को समझा देना, बता देना, पहुंचा देना, फिर ये क्यों कहा जाता है कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या और जगहों पे आता है, इसलिए कि जब कुल आए ना तो समझ जाया करें कि ताकीद के लिए, यानी ये बात इंपॉर्टेंट है, आप कह के बता दें इनको, वैसे तो सारा कुरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये कुल के साथ कही गई। अल्लाहुम्मा फातिरस समावात, अब ये जो आयत है ना, इसके बारे में मारफुल कुरान में है कि सईद बिन जुबैर फरमाते हैं, मुझे कुरान की ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़ के जो दुआ भी की जाती है वो कबूल होती है। तो आप ज्यादा तवज्जो से सुने, अल्लाहुम्मा 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 क्यों आता है, अल्लाहुम्मा का तर्जुमा आपने क्या लिखा, या अल्लाह, ए अल्लाह, राइट? तो ये तो या अल्लाह नहीं है, ये तो अल्लाहुम्मा है। कभी और आपने इस पे किया? असल में जो इसका मतलब है ना, या ये एक्चुअली या अल्लाह ही है, अल्लाहुम्मा जो है आखिर में जो इसके मीम है वो या की बदल में आई है, या की जगह आई है जो आखिर की मीम है, वरना क्या होता, या अल्लाह, ठीक है? तो या अल्लाह जब कहा जाता तो फिर शुरू में क्या होता, या होता, अल्लाह का नाम ना होता, तो इसलिए ताकि शुरू में अल्लाह का नाम आए, इस वजह से या की जगह पे मीम एंड में लाई गई, ठीक है? अब आप जब भी अल्लाहुम्मा वाली दुआएं पढ़ें तो समझ लें कि अल्लाहुम्मा मीन्स या अल्लाह, लेकिन हम या को एंड में लेकर आए हैं और अल्लाह का नाम पहले लाए हैं, ठीक है? ताकि शुरुआत अल्लाह के नाम से, या से ना हो, सही? फातिर समावाति वल अर्द, फातिर, फातिर मतलब ऐसा पैदा करने वाला जो ऐसे पैदा करे कि जिससे इससे पहले कोई चीज नमूने के तौर पे नहीं थी, इससे पहले कोई चीज इसकी मिसाल नहीं थी, अल्लाह ताला इसका मतलब ओरिजिनेटर है, यानी शुरू ऐसा नहीं था कि आसमानों जैसी कोई चीज पहले भी थी, जमीन जैसी कोई चीज पहले, वो फर्स्ट टाइम पैदा करने वाला, आसमानों का और जमीन का आलिम अल गैबी व शहादा, आलिम जानने वाला गैब का और हाजिर का, गैब हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज भी गैब नहीं है, उसके लिए हर चीज ही जाहिर है, लेकिन जो चीजें हमारे लिए गैब है वो बताई गई, वो उनको भी जानता है, जैसे मुस्तकबिल हमारे लिए गैब है, हमें क्या पता मुस्तकबिल में क्या है, आज शाम ही क्या होना है मुझे क्या पता, और फिर कयामत के दिन क्या होना है अल्लाह ताला को ये भी मालूम है। और ये दो सिफात अल्लाह ताला की लाई गई ना, फातिर समावाती वल अर्द और आलिम अल गैब व शहादा, कोई, और अगली भी आ रही है बात, लेकिन कोई इनमें अल्लाह का शरीक नहीं है, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई फरिश्ता, कोई भी आसमान और जमीन की पैदाइश में अल्लाह ताला का साजी, उसका शराकत दार पार्टनर नहीं था, और दूसरे गैब का जानने वाला कोई नहीं है, ये जो हम अकीदा अगर रखते हैं, यहाँ ये जो हमें सोच आती है कि फलां मेरे हाथ की लकीरें देख के मेरा फ्यूचर बता देता, तो फ्यूचर गैब है, अल्लाह उसको जानता है सर। और इसी तरह और भी कोई भी चीज, ये चीज ठीक है हमारे लिए करनी या नहीं ठीक, फलां बाबे के पास चले जाओ वो बताएगा ये कारोबार करूं या नहीं करूं, मेरा वीजा कब आएगा, शादी इससे करनी सही है या नहीं सही, ये सब गैब की बातें हैं। अपने ईमान को मत गंवाएं ऐसे लोगों के पास जाके, वो कार्ड से कोई बता रहे हैं, कोई किसी चीज से, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या चीजों, और कोई तो अल्लाह माफ करे कुरान से फाले निकालने खोलने बैठ जाते, कुरान को पता नहीं खुद ही बना के फाल निकाल रहे हैं जी हम कुरान से, गैब को मालूम करने के लिए। गैब का जानने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, तो अगर कुरान को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया तो गलत इस्तेमाल किए ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें सिखाई हैं हमें, ना सहाबा ने कभी की, एक बिदत शुरू कर दी। आलिमल गैबी व शहादा, अल्लाह ताला है गैब का भी और हाजिर का भी जानने वाला, इसी तरह माजी भी हमसे गैब है, हमें क्या पता आज से 1000 साल पहले इस जगह पे क्या हुआ था, इस बंदे के साथ फलां के साथ क्या हुआ था, इसकी जिंदगी क्या थी, ये सब सब हमसे गैब है। वो उसका जानने वाला कामिल इल्म रखता है, कामिल कामिल, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा इन एंड आउट उसका जानने वाला, जाहिर और बातिन को जानने वाला। हमारे तो सामने भी कोई बैठा हो उसके दिल में क्या है वो हमसे गैब है ना, वो हमारे सामने है हम उसका दिल तो नहीं खोल के देख सकते, वो हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाहु अकबर, अंत तहकुमु बैन इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तू फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान उन चीजों में जिनमें वो इख्तलाफ करते थे, अल्लाह तू ही फैसला करने वाला है अपने बंदों के दरमियान। अब ये देखें ये कि अल्लाह ताला ही फैसला करेगा, किसी और को फैसले की कुदरत हासिल नहीं, किसी और को इख्तियार नहीं कि वो फैसला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जब तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे तो किस दुआ से शुरू करते थे, ये किसी ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की ये दुआ बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रील व मीकाईला व इसराफीला फातिर السماواتي والارض, यही वाली आयत, आलिम الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون, एतिनी लिमा अख्तलिफ फी, अल्लाह मुझे हिदायत दे देना इसमें जिसमें के लोग इख्तलाफ करते, मिन अलहक बिइज़्नी का, हक की बात की अपने इज़न से, इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिराते मुस्तकीम, तू जिसको चाहे हिदायत दे सिराते मुस्तकीम की, इस ये यानी ये आयत उसमें आती थी, और ये एक और भी दुआ लंबी दुआ है लेकिन उस हदीस के एक रावी मुरसल हैं तो इसलिए वो मैं नहीं बयान करूंगी, मगर पता चलता है कि इस आयत की वैसे बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसलिए क्योंकि ये इससे दुआएं भी कबूल होती हैं, और किसी ने पूछा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि, एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वल अर्द आलिमल गैबि व शहादती ला इलाहा इल्ला अंत रब्ब कुल्ली शेई व मलीका अऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व शर्री शैतानी व शिर्किही व अक्तरिफ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम, ये सुबह शाम की दुआओं में भी आता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह मैं सुबह शाम क्या पढ़ूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था। तो इससे पता चलता है कि इस आयत की खास कोई अहमियत ही है ना, और मैंने आपको जैसे ये भी बता दिया कि ये दुआएं भी इससे कबूल होती हैं। तो बगैर नमूने के जो पैदा करने वाला और जो जानने वाला है गैब और हाजिर का, इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जो बंदा इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने फरिश्तों से फरमाएगा कि मेरे इस बंदे ने मुझसे अहद लिया था, इस अहद को पूरा करो, जो मैंने आपको तहज्जुद के वक्त की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद में ये दुआ करते थे और उसके अंदर ये आयत है, वलो अन्ना लिल्लदीना ज़लमू मा फिल अर्दी जमीअ मिथलहु माहु लफ्तदू बिही मिन सू अलअज़ाब यौम अलकियाम, और अगर चाहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया जो जो अगर जो उनके जिनके पास जिन्होंने जुल्म किया, अगर उनके पास वो सब कुछ है जो जमीन में है, यानी जितने खजाने जमीन के, और इसकी मानिंद है कि वो चाहेंगे कि वो फिदिये में दे दें इस सब कुछ को कयामत के दिन के अजाब से बचने के लिए और बुरे अजाब से बचने के लिए। अजाब तो होता ही बुरा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए वो कितना बुरा होगा। ये लाया गया कि अगर वो चाहेंगे कि रूए जमीन में जितनी चीजें हैं, अव्वल तो किसी के पास सारी जमीन है ही नहीं, कोई भी मालिक नहीं, लेकिन अगर कोई मालिक हो भी और उस दिन उसको कहा जाए कि क्या ये सब देने को तैयार हो, तो वो देने को तैयार हो जाएगा, कहेगा बस मुझे आज के दिन के इस अजाब से बचा लो, सिर्फ इस अजाब से बचा लो। यानी इतना ज्यादा इंसान तकलीफ में होगा। देखिए इस दुनिया में भी किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है, सब कुछ कर देता है, कहता बस मैं बच जाऊं, इस बीमारी से किसी तरह निकल जाऊं। तो कयामत का दिन का अजाब तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। उससे बचने के लिए तो इंसान कहेगा मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो इंसान ये सोचे कि उस दिन अगर सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा इस हिसाब से बचने के लिए, तो क्यों नहीं इसी दुनिया के अंदर इंसान कुछ अल्लाह की खातिर लगा दे, ताकि वो कयामत के दिन के अजाब से बच जाए। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला पूछेगा जहन्नुमी से, या ऐसे जो जहन्नुम में पड़ा होगा, अल्लाह ताला उसे पूछेगा कि क्या आज के दिन के अजाब से बचने के लिए तुम कुछ देने को तैयार हो? ये अगर तुम्हारे पास सारी जमीन की सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएं, तो क्या तुम देने को तैयार हो? वो कहेगा हाँ मैं देने को तैयार हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तो तुमसे इससे बहुत कम मांगा था। क्या मांगा था अल्लाह ताला ने? सिर्फ ये कि तुम तौहीद पे रहना, सिर्फ अपनी फरमाबरदारी इस चंद दिन की जिंदगी में मांगी थी, वो भी नहीं तुमसे हुआ। अब तुम सारी जमीन और जो कुछ इसमें है सब देने को तैयार हो गए। इसे बहुत कम था जो वहां पे था जो दे सकते थे और इंसान बच सकता था। अल्लाहु अकबर। तो इंसान उस वक्त इतना कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। अल्लाहु अकबर। और जाहिर हो जाएगा इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। यानी एक तो पहली बात यह कि इंसान सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, सब कुछ देने को, हत्ता के यानी जमीन की चीजें या खजाने। तो ठीक है अगर इंसान के पास दुनिया में भी पैसा हो, तो जैसे मैंने आपको कहा हर चीज लगाने को तैयार हो जाता है अपने आप को किसी बीमारी से बचाने के लिए, या यहां तक तो समझ आती है, लेकिन सूरह मारिज में तो इससे भी ज्यादा बड़ी बात है। युबस्सिरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनीह वसाहिबतिही वअखीह वफसीलतिही लती तुवी वमन फिल अर्दि जमीअन सुम युजी। कि इंसान कहेगा, उसको दिखाए जाएंगे, वो कहेगा अल्लाहु अकबर, वो कहेगा या अल्लाह आज मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे मेरा कुंबा कबीला सारा, और जो जमीन में है, जो या अल्लाह इन सब को जहन्नुम में बेशक झोंक दे, या अल्लाह मुझे बस बचा ले, मुझे बस बचा ले। अल्लाहु अकबर। माल इंसान को बहुत प्यारा होता है, वो भी देने को तैयार हो जाएगा। और दूसरे ये प्यारे रिश्ते, माल और औलाद को ही फितना कहा गया ना कुरान में, यही आजमाइश है ना, इन्हीं को सबसे ज्यादा कहेगा कि ये पेशक ले ले, मगर मुझे निजात दे दे, मुझे छोड़ दे या अल्लाह। अब ये माल या दुनिया में जो कुछ है, ये तो अल्लाह ताला फरमाएगा अगर मैं तुम्हें दे दूं तो वो फिदिये में देने को तैयार हो, कहेगा हाँ। हालांकि उसके पास होगा कुछ भी नहीं, वहां पे तो खाली हाथ होगा, नंगे पैर, नंगे बदन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंगाल। उससे ज्यादा मुफलिस इंसान कभी नहीं होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं। लेकिन कहेगा अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं देने को तैयार। लेकिन ये तो नजर आ रहे हैं ना सामने, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, माँ बाप है, बीवी है, कुंबा कबीला सब खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना। कहेगा या अल्लाह इन सबको डाल दे। इतना ज्यादा इंसान उस दिन डेस्परेट होगा अपने आप को बचाने के लिए। और ये जो आखिरी हिस्सा है इस आयत का, अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, ये वो हिस्सा है जिसको बड़े हमारे जो असलाफ थे ना, ये पढ़ के परेशान हो जाते थे कि उस दिन इंसान के लिए वो कुछ जाहिर होगा अल्लाह की तरफ से जो वो तवक्को ही नहीं करता था, उसकी वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये हो जाएगा। यानी आप समझे ना इस बात को कि दुनिया में इंसान ने जो नेकियां की उस पे वो बड़ा खुश, बड़ा उसको मान, बड़ा उसको कॉन्फिडेंस था कि जी मैं तो वहां पे बिल्कुल ठीक हूंगा, मेरे तो कोई मसला ही नहीं मेरे लिए, मैंने तो सीधे ही बस चले जाना, देखो तो मेरे पास ये भी नेकी। देखिए ना आप, हमारे भी जहनों में हमारी कोई नेकियां होती हैं जो बड़ी हमें लगता है कि बस ये तो आई एम गुड, मेरे पास ये भी तो चीजें हैं। लोग तो आजकल ये भी नहीं करते, देखो ना, मैं तो ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, बस इससे ही मैंने पार हो जाना, बस 5 नमाजें ही पढ़नी थी ना, ज़कात देनी थी, रोजे ना, मैं तो सारा कुछ करती हूँ। तो आप ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा, तो मैं बस ठीक है, मैं मुझे क्या है फिर, मुझे क्या फिक्र हो गई, ऐसे ही ये डराते रहते हैं। लेकिन ये आयत का हिस्सा, व बदा लहुम मिन अल्लाह मा लम यकूनू यहतसिबून, उनके सामने वो जाहिर होगा अल्लाह की तरफ से जो वो वहमो गुमान भी नहीं था उनके। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि इसके अमल में कहीं इखलास की कमी है, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं तकब्बुर आ गया, या कहीं कोई शिर्क की आमेजिश आ गई, या कोई अकीदे में या कोई उसके अमल में कहीं कोई कमी थी, और ये समझता रहा जी मैं तो बहुत अच्छा हूं। इसने तो सोचा कि मैं पार हो जाऊंगा, इसने तो कभी तवज्जो ही नहीं दी, या इसने कभी सोचा ही नहीं कि ये तो मेरे जो 7 चीजें लग गई हैं, मतलब कहीं शिर्क आ गया, कहीं बिदात आ गई, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं कोई और ऐसा अकीदा आ गया जो अल्लाह ताला के बारे में या आखरत के बारे में, या ऐसा कोई अकीदा बद अकीदा अपनी तरफ से घड़ा हुआ था वो था शामिल, कोई शिर्क किया जो था, या कहीं रियाकारी जो थी, या कोई ऐसी चीज जैसे सारा का सारा जो भी नेक अमल था उसके ऊपर पानी फेर दिया, इस उसको तो कब तवक्को ही नहीं थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। यानी कॉट विद सरप्राइज, ये क्या हो गया, समझ रहे हैं आप? ये इतनी डरा देने वाली बात है। मोहम्मद बिन मुनकदिर जो ताबीन में से थे, मैंने एक अपने दर्स में भी इसका बताया था, तो वो रातों को कयाम किया करते थे, लंबा कयाम, तो कयाम करते करते ना सूरह जुमर की तिलावत करने लगे, तो जब पढ़ते पढ़ते यहां पे आए ना, वह बदा लहुम मिन अल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून, तो रोने शुरू हो गए। इतना रोए कि उनके घर वाले जो थे वो परेशान हो गए कि हाय ये क्या क्या बात हो गई। जब वो घर वाले जो थे ना उस जमाने के अंदर, अबू हाजिम बड़े आलिम थे, उनको बुलाने के लिए गए, भैया आप आए और आके इनको कुछ तसल्ली दें, इनका तो हाल बुरा हो गया रो रो के। तो उनको बुलाया गया, वो आए, इन्होंने अपनी नमाज खत्म की, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों आप इतना रो रही हैं? फरमाया मैंने एक आयत पढ़ी जिसने मुझे रुला दिया। अब तो उन्होंने पूछा कौन सी आयत, तो यही बताई, तो अबू हाजिम भी जारो कतार रोने लगे कि तवक्को क्या थी, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरी नेकियां बहुत हैं, मगर अपनी कमियों को ताहियों के ऊपर तवज्जो ही नहीं थी, पता ही नहीं था, ये ना हो कि इंसान सोचता कुछ रहे और वहां पे कुछ और हो जाए। वाकई ये मकाम रोने वाला है कि हमें नहीं मालूम। इसीलिए तो ये लोग डरते थे ना कि जब तक पुल सिरात से पार होके जन्नत तक नहीं पहुंच जाते, जन्नत में वही है ना उनकी बात हजरत उमर की, के मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो, तब भी मुझे डर होगा कि कहीं ये ना हो कि मैं बाहर रह जाऊं। कि जब तक जन्नत के अंदर दाखला ना हो जाए तब तक इंसान कोई सेफ नहीं है। नहीं, इंसान सोच रहा है कि जी मैं तो मैं तो मरूंगा तो मेरे तो आते ही जन्नत के फरिश्ते आ जाने हैं, जन्नत के कफन लेके, और आगे मेरे लिए प्रोटोकॉल होगा और मेरे लिए ये खुशखबरियां हैं। और मैं तो कलमा गो हूं और कब्र का अजाब भी कुछ नहीं, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो सब कुछ पूरी करता हूँ सही। और उधर जान निकले और उधर कुछ और हो आगे, तो क्या हाल हो? आप कुछ सोचिए ना, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबा, वो मेहनतें कर करके थक गए होंगे, तस्ला नारन हामिया, मगर कयामत के दिन वो आग का लुकमा बनेंगे। अब वापसी भी कुछ नहीं है कि वापस जाके ही कुछ सही कर ले, अब करें तो करें क्या, आप तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये इतनी डरा देने वाली, इसलिए वो परेशान हो जाते थे। एक था भाई मौत के वक्त ये पढ़ के रो रहे हैं, मौत का वक्त है तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता अल्लाह की तरफ से कौन सी हालत मेरे सामने आ जाए जिसका मैं वहमो गुमान भी ना करता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो जाए, अल्लाह हू अकबर। वो लोग इस चीज से कितना डरा करते थे, हमारे जैसे लोगों के पास तो खैर कुछ है ही नहीं, हम तो सोचना भी महाल ही लगता है कि क्या हमारे लिए कौन से पता नहीं प्रोटोकॉल होंगे। वो तो इतना करते थे, फिर वो डरते थे इस बात के ऊपर कि पता नहीं आगे ये ना हो कि मेरे वहमो गुमान में भी ना हो और कुछ और हो जाए, आगे कहीं अजाब ना खड़ा हो, फिर कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर, हम ऐसी बातों को सोचना ही नहीं चाहते क्योंकि तो हम तो ना कभी डरना चाहते हैं, अपने जहन के अंदर एक खाका बनाया हुआ है उसी के मुताबिक जीते हैं, जब आएगी तो देखी जाएगी बस। जाके जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो इन आयात को लेके फिर इनके ऊपर तदब्बुर करते हैं, इतना सोचते हैं, ये ना हो कि हम शॉक्ड रह जाएं कि ये हो क्या गया हमारे साथ, ये ना हो कि ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए जो अनइमेजिनेबल हो, जिसका कभी ख्याल भी नहीं आया था। अल्लाह अकबर, व बदा लहुम सैयात मा कसबू, और जाहिर हो जाएगी उनके लिए वो बुरे नताएज या वो बुराइयां या वो सजाएं जो उन्होंने कमाई की, वो सजाएं भी उनके सामने जाहिर हो जाएंगी जो वो उन्होंने कमाई की थी, यानी उनके अमाल का बुरा नतीजा अपने हाथ की कमाई थी ना, वो भी जाहिर हो जाएगी, यानी जो भी कब से जाहिर हो जाएगी, जिस वक्त से ही इंसान की मौत का वक्त शुरू होता है उस वक्त से ही जाहिर होने लगती, जब से फरिश्ते लेने आते हैं तभी से पता चलना शुरू हो जाता। इसका मतलब है कि जो कमाई हम कर रहे हैं इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ही, वो कहीं चली नहीं जाती, वो कहीं डिसअपियर नहीं हो जाती, हम तो करके भूल जाते हैं ना, वो अल्लाह ताला के हाँ भुलाई नहीं जाती, उसके तो रिकॉर्ड में है। और उसकी जब वो रिपरकशंस आएंगे, उसकी जो जो नतीजा आएगा, उसका जो उसके पीछे पलट के जो उसकी सजा आएगी, वो आज नजर नहीं आ रही, या हो सकता है आती भी हो तो कोई आके हमें बताता थोड़ी है कि ये इस चीज की सजा है। हो सकता है जो अंदर दिल में बेचैनी बेकली और एक जिंदगी के अंदर मसाइब हैं वो उन्हीं गुनाहों की वजह से हूं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी तरफ तवज्जो ना देते हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता, अगर वहां पे पता चलेगा सब सामने आ जाएगा। वहा कभी हिम्मा के अनु भी यस्तहजी ऊन, और घेर लेगा उनको जो थे वो मजाक करते, जिस चीज का वो मजाक करते थे वो चीज उनको घेर लेगी, इसी चीज का मजाक करते थे ना कि कहाँ उठाए जाएंगे कैसे होगा, लो ये हड्डियां ये उठेंगी, ये जो भुरभुरी हड्डियां ये जो मट्टी हो गई ये उठेंगी, यानी पर्दे उठ जाएंगे ना जब गैब के, तो सब चीज सामने आ जाएगी, अल्लाह के अजाबों का मजाक, बास बादुल मौत का मजाक, उस दिन के जो सजाएं हैं उनका मजाक, जहन्नुम में दारोगे हैं, जहन्नुम के अंदर दरख्त है, लो जी दरख्त भी उगने लग गए जहन्नुम के अंदर। इंसान तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अजाब कैसे होंगे। और कितने शदीद होंगे, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वहां देखें अल्लाह ताला बड़ा है ना, तो उसकी सजाएं भी बड़ी हैं। दुनिया में ये छोटी सी चीज हो जाती है ना, छोटी सी चीज, हम कितनी तकलीफ में आ जाते हैं। थोड़ी सी मसलन कहीं दर्द ही हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो कितनी तकलीफ में होते हैं। अल्लाह ताला सबको तकलीफों से महफूज रखे, लेकिन कभी दर्द हो और आप बेहाल हो रहे हो तो जरूर सोचा करें कि कयामत के दिन के अजाब कैसे होंगे। हम इस तकलीफ के ऊपर तो इतने तरह की चीजें हमारे पास पड़ी होती हैं, और नहीं तो हम ईआर में चले जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, वो ही कोई इंजेक्शन लगा देते हैं कि जो पेन किलर होता है कि दर्द खत्म हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं दर्द को मिटाने के लिए यहां पर, मगर उस दर्द को मिटाने के लिए कौन सी चीज होगी, घेर लेगा उनको। इससे पता चलता है कि अब कहीं निकलना मुमकिन नहीं है, घेर लेगा उनको जो जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी वो सजाएं उनको घेर लेंगी। अब भाग नहीं सकते, अब इसकी दवा कोई नहीं, अब इसका मदावा कोई नहीं, अब इसको फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ये तो वहमो गुमान में भी नहीं थी। आए वो वाली जो बुराई की थी, इसका मुझे ये मिल जाएगा, वो जो मैंने एक मजाक उड़ाया था, वो जो मैंने एक बात कही थी, मैं तो वैसे ही कह दी थी। हदीस में आता है ना, इंसान ऐसे ही मुंह से बोल देता है और उसके इतने बुरे नताइज होते हैं। अल्लाह ताला को इतनी बुरी उसकी ये बात लगती है कि वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना लेता है, उसको पता भी नहीं है। तो उन चीजों पे इंसान कहाँ तवज्जो करता है। हाँ, उसकी तवज्जो इस पे जरूरत थी कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूं, ये जरूर उस पे तवज्जो है, इन चीजों को तो सोचता भी नहीं। तो उनके सामने ऐसे हालात आएंगे जिनका उनको पता ही नहीं होगा। शायद अगर दुनिया में पता चल जाए तो इंसान कितना रोए और कितनी इस चीज के ऊपर माफी मांग ले, लेकिन टाइम इज गॉन, दैट वक्त जा चुका, अब वापसी तो है नहीं, ना तौबा है, तो फिर उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हाँ कभी जब इंसान इस चीज के ऊपर गौर करते ना, एक एक आयत को लेके बैठ जाए, कहाँ हम आगे चल सकते हैं अगर एक एक आयत को लेके बैठे। हाँ कभी घेर लेगा उनको। अब घेरा किसका है, ये कोई पुलिस का घेरा नहीं जैसे कोई निकल के मुजरिम भाग सकता, ये अल्लाह ताला की सजाएं हैं जो घेर लेंगी। जब इंसान मजाक उड़ाता है अल्लाह के दीन का, या दीन वालों का, या अल्लाह के शायर का, तब नहीं वो सोचता कि उस दिन जो मजाक उड़ाए होंगे वो ही घेर लेंगे, इनका नतीजा देखना पड़ेगा। फैजा मसल इंसान दुर्रुन दआना, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है ना, पुकारता है हमें, ये इंसान की फितरत है। और इवन जो काफिर भी होते हैं वो भी अल्लाह अल्लाह करने शुरू हो जाते हैं, गॉड, ओ माय गॉड, ये कहने शुरू हो जाते हैं। गॉड का आज तक नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त आ जाता है ओ माय गॉड। मुसीबत के बाद इंसान का अमूमी तौर पे यही हाल होता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतन मिन्ना क़ाला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, जब फिर हम उसको अता करते हैं कोई नेमत अपनी जनाब से, अपनी तरफ से, यानी नेमत अल्लाह की तरफ से आती, मिन्ना हमारी तरफ से, तो वो क्या कहता है, वो नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से आई है, तो क्या कहता है, मुझे तो मेरे इल्म की बिना पे दी गई है। दो मतलब है इसके, यानी पहला मतलब इल्म की बिना पे दी गई है, जैसे कि मेरे इल्म की वजह से, ठीक है। दूसरा मतलब यानी मैं डिजर्व करता था, अल्लाह ताला ने मेरे काबिलियत को देखा था, मेरे इल्म को देखा था, तो इसलिए मुझे दी है। तो दोनों माने में क्या है कि अपनी बड़ाई, मेरा इल्म, यानी इल्म से मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरी काबिलियत, मैं जो चीज हूं मेरी अपनी वजह से। जैसे बाज दफा लोग कहते हैं सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड क्या होता है भाई, या नहीं, वो कहते हैं उसको जिसको पहले से कुछ नहीं मिला, इसने खुद ही अपनी मेहनत से सारा बनाया है, तो ये सेल्फ मेड है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, वो तो नहीं कहीं पहुंचते, ये पहुंच गया, इसका मतलब अल्लाह ने दिया है ना। लेकिन वो क्या सोचने लगता है, मेरा अपना है ये, मेरी अपनी मेहनत है जी, मेरी अपनी काबिलियत है, मैंने यहां इन्वेस्ट किया, मैंने देखा, मैं इस चीज के अंदर, मुझे बड़ा पता है, मुझे बिजनेस के गुर बहुत आते हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स के हैं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी डिग्री थी, इसकी वजह से मैं यहां पहुंचा, ये मुझे बहुत तरीके आते हैं, इस वजह से मैं यहां पहुंचा। कितनी दफा इंसान अपने मुंह से खुद ये कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तकलीफ थी तब तो फौरन भागे भागे आ गए, और जब नियमत का अल्लाह ताला ने मजा चखाया तो उस वक्त अल्लाह याद नहीं आता, उस वक्त अपनी काबिलियत याद आने लगती। और ये जो लफ्ज है ना खवलना, इसका मतलब क्या है, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी इवज के, बदले के, अपनी तरफ से अता करना। यानी ये नहीं कि तुमने कुछ किया, कोई ऐसा तुम्हारा कारनामा था जिसकी वजह से अल्लाह ताला अता कर रहा है, बड़े मेहनती या बड़े अल्लाह के, अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अता किया, तुम्हारी नहीं कोई काबिलियत थी, अल्लाह ने अता किया, तो तुम क्या कहना शुरू कर देते हो, बस मेरे मेरी अपनी थी। जबकि कहना क्या चाहिए, जब भी इंसान को नेमत मिले तो करना क्या चाहिए, शुक्र, शुक्र अदा ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अमूमी तौर पे देखें जितनी नेमतें ज्यादा हैं उतनी नाशुक्री ज्यादा है, देख ले आप ये नोट करें ना, आप दुनिया के अंदर आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जिनके पास जितनी ज्यादा नेमतें नाशुक्री उतनी ज्यादा। अपने घरों के अंदर देख लें, अपने बच्चों को देख लें, उनको छोटी मोटी कोई चीज देते हैं वो कहते हैं ये क्या चीज आपने हमें दे दी, ये कौन सी ऐसी, आप उनको कोई गिफ्ट दे देना कोई छोटा मोटा तो वो उनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इवन अब तो इतना बच्चों को हमने पैम्पर कर दिया है कि उनको कोई खाने पीने की भी चीज आम दे दे तो उनको इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगती, कहते ये तो हम रोज ही खाते हैं ये पिज्जा या आइसक्रीम है। एक वक्त होता था छोटे बच्चों को आइसक्रीम देते थे, कोई कैंडी देते थे, उनको कोई इसकी वैल्यू होती थी, अब वो कहते ये क्या, उस पे भी वो खुश नहीं होते, ना शुक्रिया ना शुक्रिया। अब बच्चों से बड़ों तक देख ले, ना शुक्री ना शुक्रिया, जितनी नेमते ज्यादा है ना शुक्री भी ज्यादा है। छोटी मोटी चीज तो अब नाक पे नहीं है चढ़ती, अब कोई बहुत ही आला कोई चीज हो तो फिर है। कोई बंदा ऐसा भी है जिसको दो वक्त की रोटी मिल जाए तो वो शुक्र अदा करता है, और कोई ऐसे हैं कि जिनको चार चार खाने भी सामने रखे हुए हैं, फ्रिज भी भरे हुए, तो कहते हैं क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं खाने को, आज तो कुछ खाने को है ही नहीं। नेमत की शुक्र गुजारी हमारे अंदर खत्म होती जा रही है। नेमत की शुक्र गुजारी कैसे होती है, क्या हक है शुक्र करने का, कैसे शुक्र अदा होता है, दिल में भी माने कि अल्लाह की तरफ से है, मेरी अपनी नहीं है काबिलियत, मैं डिजर्व नहीं करती थी, ये इंसान का आई डिजर्व इट। हम तो हर चीज को अपना हक समझते हैं ना, यानी खाने पीने से लेके ये आजा पैसा जितनी चीजें हैं हम सब समझते हैं कि ये हमारा हक है, हालांकि दिल में ये होना चाहिए कि मेरा हक नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। नंबर टू, जुबान से इसका इजहार करना कि ये अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अता कर दिया। नंबर थ्री क्या, अमल से इसका इजहार करना। अमल से कैसे इजहार करेंगे, इताअत करके अल्लाह ताला की। इताअत बढ़ती है कि नहीं, जिस वक्त की नेमत मिलती है इताअत बढ़नी चाहिए ना, बढ़ती है क्या कम हो जाती है, जिस दिन ज्यादा पेट भर के खाए उस दिन आके एक नमाज पढ़ने का भी दिल नहीं करता, दिल करता बस सो जाए लेट जाए। दावत से आए बहुत अच्छा खाना खाया, इतनी नेमतें मिली, हंसे बोले वापस आए, और उसके बाद क्या हालात होते हैं हमारे, शुक्रगुजारी होनी चाहिए ना, इमीडिएट क्या होना चाहिए, बाद की बात तो छोड़े, उस वक्त भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी नेमतें दी, वहां से वहां तक बुफे लगा हुआ था, इतनी डिशेस मेरे सामने, जो मर्जी खाओ जो मर्जी छोड़ो। इसके अलावा जितनी नेमतें हैं, सेहत एक नेमत है, उसकी कितनी शुक्रगुजारी हो रही है कि इताअत बढ़ जानी चाहिए, लेकिन कितनी शुक्रगुजारी होती। लेकिन हाँ, मैंने तीनों चीजें आपको बताई, इन तीनों चीजों से शुक्र बनता है। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह की मैं तस्बीह कर लेती हूँ और उसके बाद मेरी जो मर्जी आए वो मैं करूँ, अल्लाह की इताअत तो कहीं भूली भी है। ये शुक्रगुजारी नहीं है, जो देने वाला है उसके आगे झुक जाना शुक्रगुजारी है, जो मुनइम है उसका एहसान मानना शुक्रगुजारी। जिसका एहसान होता है ना इंसान उसके आगे जुबान नहीं खोल सकता, जिसका एहसान होता है ना इंसान उसके आगे सर नहीं उठा सकता। हम तो ना एहसान मानने वाले हैं, एहसान फरामोश, ना एहसान को मानते हैं, ना हमें शुक्रगुजारी करनी आती है। सच बात, इसीलिए बातें बहुत आती हैं, बहुत बातें आती हैं, ऐसा क्यों, वो क्यों, ये क्यों, इतनी ऑब्जेक्शंस हैं। जिसका आप एहसान मानते हो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे क्या? हाँ, उसके ऊपर कहेंगे क्या कि ये क्यों और वो क्यों? तो अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो शुक्रगुजारी नाम की चीज नहीं है। शुक्रगुजारी है कि इंसान फिर उस अल्लाह ताला को भूले नहीं कभी अपनी इस जिंदगी के अंदर। शुक्रगुजारी यह कि नेमतें बढ़ती जाएं तो इंसान झुकता जाए। हम देखते हैं कि जिनके पास कम है वो फिर भी सबर और शुक्र के साथ रह रहे हो, जिनके पास ज्यादा है उनके मुंह गिले शिकवे करने से ही बाज नहीं आते। वो उतने ही ज्यादा हर वक्त शिकायती मोड में रहते, उनको नेमते नजर ही नहीं आती। नजर आएंगी तो शुक्र अदा करेंगे ना, नजर आती ही नहीं है, ब्लाइंड है उस तरफ से। क्या नजर आता है, ये क्यों खराबी हो गई, इतनी सी भी चीज क्यों इधर से उधर हो गई, ये क्यों कमी हो गई, ऐसा क्यों हुआ, छोटा सा क्यों नुकसान हुआ, करोड़ों में 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो वो नजर आएगा, वो करोड़ नजर नहीं आएंगे। इसी तरह हमारे पास अनगिनत नेमतें जिनको हम गिन भी नहीं सकते, वो नजर नहीं आती। हाँ, वो कहीं एक जो कमी है वो जरूर नजर आती है। और ना शुक्री किसको कहते हैं? तो जब नेमत नहीं होती या तकलीफ पहुंचती है बहुत पुकारता है, नेमत मिल जाती है तो उज्ब का शिकार हो जाता है, यानी खुद पसंदी का। खुद पसंदी, ये खुद पसंदी है कि मैं आई डिजर्व इट, ये खुद पसंदी कि मेरा इल्म, जैसे कारून ने कहा कि ये मुझे दिया गया मेरी अपनी काबिलियत की वजह से दिया गया, और अल्लाह ताला ने फिर उसको कैसे धंसा दिया जमीन में खजानों समेत। और हम तो रोज कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने पकाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मेरा हुनर है, मुझे तो शुरू से शौक था, आखिर मेहनतों से हमने कमाइयां की नहीं। बल ही फितना तुम वला किन्ना अक्सर हम ला यालमून, हालांकि ये एक फितना है। फितना से मतलब क्या? फितना वो नहीं जो हम उर्दू में बोलते, फितना से मतलब क्या, यानी ये तो आजमाइश है, टेस्ट है, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती बात कि ये टेस्ट होता है कि अल्लाह ताला जब तकलीफ देता है तब भी आजमा रहा होता है, और जब नेमत देता है तब भी आजमा रहा होता है कि अब मेरा बंदा कहता क्या है, अब मुझे याद करता है कि नहीं, अब मुझे पहचानता है कि नहीं, कि वो मेरा एक रब है जिसने मुझे ये नेमत दी, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह मैं तेरा कैसी शुक्र अदा करूं कि मैं तो सजदे में भी पड़ी रहूं तो अल्लाह तेरा मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती। क्या ये रवैया है, या ये रवैया, हाय क्या हो गया, लुट गए, मारे गए, ये हो गया, वो हो गया। अल्लाह ताला हमें माफ करे, लेकिन हम सब में ना शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बहुत ही कम शुक्र अदा करते, बहुत ही कम, अगर हम कर भी ले तो बहुत ही कम, हमें एहसास नहीं है। जो नेमते हमारे पास है हमें नहीं है एहसास उनका, यकीन जाने वाकई नहीं, हमें रियलाइजेशन ही नहीं है। उस ऑन टॉप ऑफ इट ये कह देना इन्नमा उतीत हुआ ला इल्म, मुझे तो मेरे इल्म की बिना पे मिला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर कोई अपनी अपनी गुण गा रहा है, अपनी तारीफें, अपने आप को समझना कि बस मैंने कुछ किया ही है तो फिर मिला है ना, हर एक को तो नहीं मिल जाता ना, मेरे अंदर तो कुछ होगा ही तो मिला है। नहीं, ये फितना है, ये आजमाइश है। कितनी दफा नेमत मिलने पे हम सोचते हैं ये एक टेस्ट है मेरा, यूं ही नेमत आती है, आपके हस्बैंड को बोनस मिले, आपके कारोबार में तरक्की हो जाए, आपको कोई खुशी मिल जाए, आप मसलन है कि आप के कोई प्रमोशन मिल जाती है आपको किसी जगह पे आप काम करते हैं, आपको अच्छा घर मिल जाता है, आप अच्छी जगह पे आपके रिश्ता हो जाता है। कितनी दफा पे ये होता है कि ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का करम है, मैं तो ये डिजर्व नहीं करती। आप देखिए बुखारी में एक रिवायत आती है बनी इसराइल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 आदमियों की ना एक कहानी बताई है, और वो हमें बहुत अच्छी तरह बताती है कि किस तरह ये चीजें हमारे लिए टेस्ट होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी था जो लेप्रसी वाला होता है पेशेंट, एक गंजा था, एक अंधा था। अल्लाह ने इन तीनों को आजमाना चाहा, एक फरिश्ते को इनकी तरफ भेजा, वो कोड़ी के पास गया और कहने लगा तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरा अच्छा अच्छी खाल हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, लोग मुझसे नफरत और कराहत करते हैं तो मेरा मतलब मैं सही हो जाऊं ना। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेर दिया और उसके बदन का रंग अच्छा हो गया, खाल भी दुरुस्त हो गई। अब देख लें अब कितनी दफा है कि हम बीमार होते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हमें सेहत दे देता है, शिफा दे देता है, उसके बाद हमें भूल ही जाता है कि किसी ने हमें शिफा दी, हम उसके बाद क्या कहते डॉक्टर बहुत अच्छा था, ये दवाई बड़ी अच्छी दवाई है, इससे मुझे आराम आया, नहीं अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, ये क्यों नहीं आता? आप जरूर किसी को बताएं, दवा का भी बता दें, डॉक्टर का भी रेफरेंस दे दें, लेकिन अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, अल्लाह ने इस डॉक्टर के हाथ में मेरे लिए शिफा डाल दी, ये भी तो कह सकते हैं। तो वो उसका रंग अच्छा हो गया, खाल भी दुरुस्त हो गई। फरिश्ते ने पूछा दुनिया के मालों में से कौन सा माल तुझे पसंद है? वो कहने लगा मुझे ऊंट या गाय बैल बहुत पसंद। तो वो फरिश्ते ने उसको वो दे दिए और कहा कि तुझे इसमें बरकत हो। फिर वो गंजे के पास गया और उससे पूछा तू क्या चाहता है? गंजा कहने लगा अच्छे बाल होना, ये गंजापन जाता रहे, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे मतलब बातें बनाते होंगे। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और वो सही हो गया और बहुत अच्छे बाल निकला है। फिर फरिश्ते ने कहा दुनिया का कौन सा माल तुझे पसंद है? वो कहने लगा मुझे ये चीजें पसंद है, गाय बैल और गाभन गाय और ये। तो फरिश्ते ने कहा अच्छा तुझे इसमें बरकत हो और उसको दे दी। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास गया, पूछा तू क्या चाहता है? वो कहने लगा अल्लाह मेरी बीनाई मुझे फेर दे, मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पे हाथ फेरा, अल्लाह ने उसकी रोशनी वापस कर दी। और अब उसने पूछा कौन सा माल पसंद है? उसने कहा मुझे बकरियां पसंद है ये। फरिश्ते ने उसको भी बकरियां बहुत सारी दे दी, फिर ऊँटनी और गायें भी दे दी। तो इस तरह से सब के पास चीजें होंगी, फिर ऊँटनियां गायें और ये जितनी भी इनके पास थी, गंजे के पास भी, अंधे के पास बकरियां और उसके पास ऊंट, ये सब फरिश्ते ने उनको दे दिए। फिर उसके बाद अब इनका टेस्ट शुरू होता है। फरिश्ता अब अल्लाह ताला ने उसको भेजा कि वो अपनी उसी सूरत में और शक्ल में, जिस शक्ल में पहले आया था ना जब उसने दिया था, उसी शक्ल के अंदर वापस आया और कोड़ी से कहने लगा मैं एक मोहताज आदमी हूँ, मुसाफिर, मेरा सामान सब चला गया, अब मैं बगैर किसी मदद के तेरी और बगैर किसी की मदद के तेरी इनायत के अपने मैं ठिकाने नहीं पहुंच सकता, तो तू मुझे मेरी मदद कर, मैं तुझसे अल्लाह के नाम पे सवाल करता हूँ जिसने तेरा बदन अच्छा किया, तेरी खाल दुरुस्त की, माल दिया, मुझे एक ऊंट दे दे जिसपे मैं सवार होके वापस अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने वतन चला जाऊं। वो कहने लगा भाई मैं तो बहुत कर्जदार हूँ, बहुत आदमियों का मैंने भी देना है। फरिश्ते ने कहा मैं जैसे तुझे पहचानता हूँ तू कोड़ी था, सब लोग तुझसे घिन करते थे, तू मोहताज था, अल्लाह ने तुझे ये सब कुछ दिया। कोड़ी ने कहा वाह मैं तो बुजुर्गों के वक्त से मालदार चला आ रहा हूं, फरिश्ते ने कहा, खैर अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था। फिर वही फरिश्ता उसी शक्ल और सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही कहा जो कोड़ी से कहा था। गंजे ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसे कोड़ी ने दिया था कि जी मैं तो खुद इतना वो हूं, जैसे कोई मांगने आ जाए, पहले हम खुद के हालात हमारे ऐसे होते, फिर कोई कुछ मांग ले या कोई पूछ ले या कोई बात कह दे आपने ये कैसे किया, तो ना जी हमें तो पहले से ही आता है, हालांकि 10 दफा हमने वो चीजें खराब की होती हैं, हमें खुद नहीं आता था, हमने कितनी मुश्किल से कितनी दफा फेल होने के बाद वो चीज सीखी, और उसके बाद आप कोई हमसे पूछा है तो नहीं नहीं हम क्यों बताएं, ये भी ना ले ले ये चीज, इसको भी ना आ जाए कहीं, कि हर जगह पे के करते हैं ना ये, नेमते ही है ना, चाहे वो कोई हुनर है, चाहे वो कोई इल्म है आपके पास, चाहे कोई तरकीब है आपके पास, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास कोई भी एक बात है जो नफा पहुंचाने वाली है। अच्छा वो अब इसके पास गया गंजे के पास, तो उसने भी ऐसा कहा, तो फरिश्ते ने उसको भी यही कहा कि अगर तू झूठ बोलता है ना तो अल्लाह तुझे भी वैसा ही करते जैसे पहले तू था। मैंने उससे कहा था ना मैं तो हमेशा से ऐसे था, लो मैं कब भी ऐसे था। अब अंधे के पास गया, उससे कहने लगा मैं एक मोहताज हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरे पास सामान नहीं है, अब बगैर अल्लाह की मदद के और तेरी तवज्जो के मैं अपने वतन नहीं पहुंच सकता, मैं तुझे अल्लाह का नाम दे के वास्ता दे के कहता हूँ कि जिसने तेरी आंखें रोशन की एक बकरी दे दे जिससे मैं सफर में अपने ठिकाने तक पहुंच जाऊं। अंधा ये सुनकर कहने लगा बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे बिनाई दी, मोहताज था, माल दिया, तू उसके नाम पे मांगता है तो जो तेरा जी चाहे तू ले ले, मैं आज तुझको कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह के नाम पर तू जो ले लेगा तुझ पे कोई उसके ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगा। फरिश्ता कहने लगा मैं मोहताज नहीं हूं, अपनी बकरियां रहने दे, अल्लाह ने तुम तीनों को आजमाया था और तुझसे खुश हुआ और तेरे दोनों साथियों से नाराज हुआ। अब ये देखिए कहानी हमारे लिए कितनी बड़ी इबरत की कहानी है ना ये बुखारी में, कि हमारे पास कितने ऐसे मौके आते हैं, कोई फरिश्ता तो आ नहीं रहा लेकिन अल्लाह ताला इस तरह अपने कोई बंदे को मोहताज को भेज देता है या जिसको जरूरत होती भेज देता है, फिर हम आगे से क्या कहते हैं, लो जी हमारे तो जद्दी पुश्ती, हमारे पास ये जायदादें चल रही हैं, हम तो इतने अमीर पहले से हैं, हमारे पास तो इतना कुछ है, कहाँ हमने तो कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं देखा, हम तो ये थे, हम तो वो थे, कितनी अपनी बड़ाइयां बयान करती हैं, मुझे तो ये आता था बचपन से, तो मैं ऐसी थी, अपनी खूबियां ही बयान करते रहना, अल्लाह अकबर। हाँ लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि ये आजमाइश है, तो इसका मतलब है कि हमें इन अक्सरियत में शामिल नहीं होना जो ये नहीं जानते, हम तो इल्म ले रहे हैं ना, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी अल्लाह हमें कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला की वो नेमत हमारे लिए एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान पे हमने अल्लाह की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ना है, और अगर नेमते मिले और इंसान उल्टा शुक्रगुजारी छोड़ के नाशुक्री में और अल्लाह की नाफरमानी में गुनाहों में आगे बढ़ने लगता है ना, तो अल्लाह ताला की फिर ढील होती है, फिर अल्लाह ताला पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है, जैसे इन दोनों को पकड़ा जो इस कहानी में आपको बताएगा।